भगवते वासुदेवाय भगवते उत्तम श्लोके श्रीमद्भागवतम स्कंद 9 अध्याय 6। इस अध्याय की शुरुआत है, इसलिए श्लोक से पहले सारांश पढ़ेंगे। महाराज अम्बरीश के वंशजों का वर्णन करने के बाद शुकदेव गोस्वामी ने शशात से लेकर मानधाता तक सारे राजाओं का वर्णन किया, और इस प्रसंग में उन्होंने यह भी वर्णन किया कि किस प्रकार सौहरी मुनि ने मानधाता की पुत्रियों से विवाह किया। महाराज अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान तथा शंभु। विरूप का पुत्र पृषदश्व था, जिसका पुत्र रथीधर हुआ। रथीधर के कोई संतान नहीं थी, किंतु अंगिरा ऋषि की कृपा याचना करने पर उसकी पत्नी के गर्भ से कई पुत्र हुए। इन पुत्रों के उत्पन्न होने पर वे अंगिरा ऋषि तथा रथीधर के वंशज कहलाए। मनुपुत्र इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए, जिनमें से विकुक्षी, मिनी तथा दंडका सबसे बड़े थे। इक्ष्वाकु के पुत्र संसार के विभिन्न भागों के राजा बने। इनमें से विकुक्षी ने यज्ञ के विधि विधानों का उल्लंघन किया, जिससे उसे राज्य से निकाल दिया गया। वशिष्ठ की कृपा तथा योग शक्ति से महाराज इक्ष्वाकु को भौतिक शरीर त्याग करने के बाद मोक्ष प्राप्त हुआ। महाराज इक्ष्वाकु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र विकुक्षी वापस आया और उसने अपने राज्य की बागडोर संभाली। उसने नाना प्रकार के यज्ञ किए और इस तरह भगवान को प्रसन्न किया। बाद में यही विकुक्षी शशात नाम से विख्यात हुआ। विकुक्षी के पुत्र ने देवताओं के लिए असुरों से युद्ध किया और अपनी बहुमूल्य सेवा के कारण वह पुरंजय, इंद्रवाह तथा ककुत नाम से विख्यात हुआ। पुरंजय का पुत्र अनेना था और अनेना का पुत्र पृथु हुआ। पृथु का पुत्र विश्वगंधी था, विश्वगंधी का पुत्र चंद्र हुआ, चंद्र का पुत्र युवनाश्व और उसका पुत्र श्रावस्त हुआ, जिसने श्रावस्तीपुरी का निर्माण कराया। श्रावस्त का पुत्र बृहदाश्व हुआ, बृहदाश्व के पुत्र कुबलायाश्व ने धुंधु नामक असु का वध किया, जिससे वह धुंधुमार नाम से विख्यात हुआ। धुंधुमार के पुत्रों के नाम थे दृढ़ाश्व, कपिलाश्व, राश्व। इनके अतिरिक्त उसके हजारों पुत्र और भी थे, लेकिन वे सभी धुंधु से निकलने वाली अग्नि में जलकर राख हो गए। दृढ़ाश्व का पुत्र हरियश्व हुआ, हरियश्व का निकुंभ, निकुंभ का बहुलाश्व और उसका पुत्र कुशाश्व हुआ। कुशाश्व का पुत्र सेनाजीत था और उसका पुत्र युवनाश्व। युवनाश्व के 100 पत्नियां थी, किंतु उसके कोई संतान नहीं थी, अतः जंगल चला गया। जंगल में ऋषियों ने उसके लिए इंद्र यज्ञ संपन्न किया। एक बार राजा जंगल में इतना प्यासा हुआ कि उसने यज्ञ के लिए रखा हुआ जल पी लिया। फलस्वरूप कुछ काल बाद उसकी दाहिनी कोख से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह पुत्र अत्यंत सुंदर था और स्तनपान करने के लिए रोने लगा, अतः इंद्र ने उसे अपनी तर्जनी उंगली चूसने को दे दी। इस तरह यह पुत्र मानधाता कहलाया। कालांतर में युवनाश्व की तपस्या के बल पर सिद्धि प्राप्त की। तत्पश्चात मानधाता सम्राट बना और उसने सप्तद्वीप वाली पृथ्वी पर राज्य किया। चोर तथा उचक्के इस बलशाली राजा से थर्राते थे, इसलिए राजा त्रस्तदस्यु कहलाने लगा, जिसका अर्थ है वह जिससे बदमाश और उचक्के भयभीत हों। मानधाता की पत्नी बिंदुमती के गर्भ से 3 पुत्र तथा 50 पुत्रियां उत्पन्न हुई। पुत्रों के नाम थे पुरुकुत्स, अम्बरीश तथा मुचकुंद। ये 500 पुत्रियां सौहरी नामक ऋषि की पत्नियां बनी। इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी ने सौहरी मुनि के इतिहास का वर्णन किया है, जो मछली के प्रति इंद्रिय विचलन के कारण अपने योग में पतित हुए और काम सुख के लिए मानधाता की सभी पुत्रियों से विवाह करना चाहा। बाद में सौहरी मुनि को अत्याधिक पश्चाताप हुआ। उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके कठिन तपस्या की और इस तरह सिद्धि पाई। सुखदेव गोस्वामी ने यह भी वर्णन किया है कि किस तरह सौहरी मुनि की पत्नियां भी सिद्ध बनी। तो आज का श्लोक है श्लोक क्रमांक 1। श्री शुक उवाच विरूपः हेतुमाना शम्भुः अम्बरीश सुतः त्रयः विरूपात वृषदश्वः अभूतः तत्पुत्रः तु रथीतरः। श्री शुक उवाच विरूपः केतुमा शम्भो अम्बरीश सुतास्त्रयः विरूपात प्रशद्धश्वो अभूत तत्पुत्र सत्तुर विरूपात प्रशदश्वो भू तत्पुत्र स्तुरथीतरः। श्रीशुक उवाच विरूपः केतुमा शम्भो अम्बरीश सुतास्त्रयः विरूपाद प्रशदश्वो भूत् तत्पुत्रस्तु रथीतरः। श्रीशुक उवाच विरूपः केतुमान् शम्भो अम्बरीश सुतास्त्रयः विरूपात् प्रशदश्वो भूत् तत्पुत्रस्तु रथीतरः।
अभूत
था तत्पुत्रः उसका पुत्र तू तथा रथितरह रथितर नामा। अनुवाद श्री प्रभुपाद के द्वारा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, अम्बरीश के तीन पुत्र हुए विरूप, केतुमान तथा शंभु। विरूप के पृषदश्व नामक पुत्र हुआ और पृषदश्व के रथितर नामक पुत्र हुआ। से तात्पर्य नहीं है, इसलिए अगले श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे। रथितर निसंतान था, अतः उसने अंगिरा ऋषि से पुत्र उत्पन्न करने के लिए प्रार्थना की। इस प्रार्थना के फलस्वरूप अंगिरा ने रथितर की पत्नी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न कराए। ये सारे पुत्र ब्राह्मण तेज से उत्पन्न थे। तात्पर्य, वैदिक युग में कभी कभी निम्न कुल वाले पुरुष की पत्नी से अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए किसी उच्च पुरुष को बुलाया जाता था। ऐसी स्थिति में स्त्री की तुलना खेत से की जाती है। खेत वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अन्न उपजाने का काम सौंप सकता है, किंतु उस खेत से जो अन्न उपजता है वह खेत के स्वामी का होता है। इसी प्रकार स्त्री को कभी कभी अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से गर्भ धारण करना होता था, किंतु इस तरह से उत्पन्न पुत्र उसके पति के पुत्र कहलाते थे। ये पुत्र क्षेत्र जात कहलाते थे। चूंकि रथितर के कोई पुत्र न था, अतः उसने इस विधि का लाभ उठाया। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाङ्गिविशदाः चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयि ददाति स्वप्नानिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भागवत का ये प्रसंग सौभरी मुनि का पतन इस अध्याय में वर्णन किया गया है। इस प्रकार सौभरी मुनि जो कड़ी तपस्या में लगे थे और थोड़ा सा विचलित हुए, और किस तरह उनका पतन हुआ और कई वर्षों के बाद उनको वो पुनः स्मरण आया कि वो कैसे अपने जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन थोड़े से विचलित होने के कारण पुनः उनको इस संसार में सांसारिक बंधनों में फंसना पड़ा। इस अध्याय की शुरुआत सुखदेव गोस्वामी अम्बरीश महाराज की वंशावली से कर रहे हैं। कई बार भागवत में ऐसे प्रसंग आते हैं, ऐसे स्थानों पर जहाँ बहुत सारे नामों को गिनाया जाता है, जैसे विशेष करके इस अध्याय। इस अध्याय में बताया जाएगा अम्बरीश महाराज के पुत्र हुए, फिर उनके पुत्र हुए, फिर उनके पुत्र हुए, उन्होंने इनसे विवाह किया, फिर उनसे इतने पुत्र हुए, उनकी पुत्रियां हुई इत्यादि। कई बार प्रश्न आता है कि ऐसे विषम समय में जहाँ परीक्षित महाराज के पास ज्यादा समय नहीं था, केवल 7 दिन थे, और उन 7 दिनों में भगवान की कथा छोड़कर सुखदेव गोस्वामी ये सारी वंशावली का वर्णन क्यों कर रहे हैं? इतने सारे नाम बता रहे हैं, क्या लाभ है? सीधे सीधे कृष्ण कथा क्यों नहीं कहते? इसका पुत्र हुआ, उसका पुत्र हुआ, इसने उससे विवाह किया, फिर उनकी पुत्रियां हुई इत्यादि। तो क्या ये परीक्षित महाराज के लिए लाभदायक था सुनना? या अगर ज्यादा लाभदायक नहीं था तो सुखदेव गोस्वामी ने क्यों समय व्यर्थ किया? इतने ही श्लोकों में कोई कृष्ण कथा और कह सकते थे, भगवान के किसी अवतार का वर्णन कर सकते थे, क्योंकि उनको सुनने से लाभ होता है। विदुर बताते हैं भागवत के तीसरे स्कंद में कि जब हम लोग भगवान की कथा सुनते हैं तो उसको सुनने का और उत्साह बढ़ता है। मनोन तृप्त्यति श्रृण्वतान्नाम सुश्लोक मौले श्वेताम्बतानी। ये जो भगवान की कथा है, जो अच्छे अच्छे श्लोकों से सुश्लोक मौले उत्तम श्लोकों से जिनका गुणगान किया जाता है, ऐसी कथा मनोन तृप्त्यति श्रृण्वतान्नाम, मन कभी तृप्त नहीं होता ऐसी कथा सुनने से। तो ऐसी कथा को छोड़कर सुखदेव गोस्वामी ऐसा वर्णन कर रहे हैं जो हम लोगों को भी कभी कभी पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि क्यों इतने सारे वर्णन। आचार्य समझाते हैं कि जो भी चीज भगवान से या भगवान के भक्तों से संबंधित है वो सुनने योग्य है, क्योंकि भगवान से जो भी चीज संबंधित होती है वो आध्यात्मिक होती है। तन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः, केवल जिनका नाम सुनने से, तन्नाम श्रुति मात्रेण, अगर व्यक्ति मुक्त हो सकता है, निर्मल हो सकता है, तो फिर ऐसी चीजों का श्रवण करने से जो कृष्ण से संबंधित हैं, ये निश्चित है कि वो शुद्ध होगा। इसीलिए भागवत में जब ये वंशावली वर्णन की जाती है, जैसे कि आज का जो वर्णन है, क्योंकि ये अम्बरीश महाराज से संबंधित है और अम्बरीश महाराज भगवान से संबंधित हैं, इसीलिए इसको सुनने से भी हृदय शुद्ध होता है। पद्म पुराण में जब शिव जी पार्वती देवी को ये बताते हैं कि आराधना नाम सर्वेशां विष्णु आराधना परम, और तब वो कहते हैं कि इससे भी ऊंची एक आराधना है, सारी आराधनाओं में भगवान विष्णु की आराधना परम है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु है, उनसे परे कोई नहीं है। लेकिन फिर कहते हैं कि इससे भी परे एक आराधना है, तदिया नाम सम अर्चनम, ऐसी अर्चना, ऐसी आराधना, ऐसी पूजा जो ऐसी चीजों की जाती है, तदिया नाम, तदिया नाम अर्थात जो सब भगवान से संबंधित है, जैसे भगवान के भक्त, भगवान की लीलाएं, भगवान का धाम, ये भी आराध्य है। आराध्य ब्रजेश तनयस्तद् धाम वृंदावनम, जैसे भगवान आराध्य हैं ऐसे ही उनका धाम भी आराध्य है। तो इसीलिए ये वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, इसको सुनने से हृदय शुद्ध होता है, और साथ ही साथ हमें पता चलता है कि कैसे भव्य सभ्यता, कैसी महान सभ्यता हमारी रही है। हम जिस सभ्यता में आ रहे हैं, हम जिस ट्रेडिशन को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, कितना महान है। और ये याद दिलाने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हम लोग भूल चुके हैं। वैदिक सभ्यता ये बड़े ऊंचे स्तर की सभ्यता रही है, और इसकी गलत समझ, इसको ठीक से न समझने के कारण समाज में उत्पात फैलता है। आज के श्लोक में एक ऐसा वर्णन है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भौतिक दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से बड़ा गलत दिखता है। और कोई ये पूछ सकता है कि वैदिक सभ्यता ऐसी चीजों को क्यों अनुमति देती है, जैसे आज यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि कभी कभी स्त्री को किसी दूसरे पुरुष से गर्भ धारण करना होता था, लेकिन फिर भी वो उसी का वंशज कहलाता था। और इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनको हम लोग देखते हैं, जैसे कौरव, कौरव अर्थात हम लोग अगर देखें युधिष्ठिर पांडु जो हुए थे, और कौरवों के पिता अर्थात पांडु महाराज, धृतराष्ट्र, विदुर, ये सब अगर इनका देखा जाए, जिनको हम लोग बड़े ऊंचे स्तर पर मानते हैं, तो ऐसे ही उत्पन्न हुए थे। विचित्र वीर्य की मृत्यु हो चुकी थी, भीष्म ने इनकार किया था विवाह करने से, तो फिर ऐसे समय में, ऐसे आपातकालीन अवस्था में फिर व्यासदेव को आना पड़ा और उनके द्वारा जो विचित्र वीर्य की पत्नियां थी उन्होंने गर्भ धारण किया। स्वयं पांडव, ये पांडु महाराज से उत्पन्न नहीं हुए, ये हम सब जानते हैं। कर्ण, इनका भी जब जन्म हुआ तो सूर्य पुत्र कहलाए, सूर्य से जन्म हुआ कुंती के द्वारा। कर्ण इसलिए कहलाए क्योंकि कुंती के कान से आए थे, इसलिए इन्हें कर्ण कहते हैं। तो ऐसे कई उदाहरण शास्त्रों में हैं जहां पर ये प्रमाण मिलते हैं कि ऐसी आपातकालीन स्थितियों में जहां पर वंश को आगे चलाने वाला कोई नहीं था और उसके लिए समाज में दुर्व्यवस्था फैल सकती थी, महान ऋषियों ने, उच्च स्तर के लोगों ने इस कार्य को किया। महान ऋषि जैसे व्यास इत्यादि, यहाँ पर अंगिरा ऋषि ने रधिदर इनकी पत्नी के गर्भ में पुत्र उत्पन्न किया, ऐसे ही व्यास देव ने भी किया। तो सामाजिक दृष्टि से या नैतिकता की दृष्टि से गलत हो सकता है, लेकिन आपातकालीन अवस्थाओं में शास्त्र इनकी अनुमति देते हैं। लेकिन इनकी अनुमति दी जाती है समाज की प्रगति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। लेकिन जब इन वैदिक नियमों को हम ठीक तरह से नहीं समझते हैं तब हम पतन की ओर जाते हैं, और जब इन्हीं वैदिक नियमों को हम अच्छी तरह से समझकर एक आचार्य या भक्तों के निर्देशन में उसका पालन करते हैं तो सारा समाज ये प्रगति की ओर जाता है। ये बहुत सरल है समझने के लिए। अगर हम वैदिक कल्चर को ठीक से नहीं समझेंगे, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैदिक कल्चर लीड्स टू डिग्रेडेशन, तो हमारा पतन होता है। और क्यों होता है? क्योंकि वैदिक सभ्यता ये मानवों के लिए दी गई है, मनुष्यों के लिए दी गई है, और इसलिए दी गई है ताकि इस सभ्यता का पालन करते हुए हम भगवान की भक्ति को प्राप्त करें। आज समाज में हम इस सभ्यता को भूल बैठे हैं, इसको गलत मानते हैं, गलत समझते हैं, या ऐसे चीजों को लेकर गलत प्रमाण देकर हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं, जिस कारण से सारे समाज में उत्पात फैलता है। मांसाहार करना एक दृष्टि से देखा जाए तो शास्त्रों में इसकी अनुमति है, व्यक्ति मांस खा सकता है, लेकिन बड़ी ही विशेष स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में, जहां पर जन्म मृत्यु का सवाल हो तब ये अनुमति दी जाती है। लेकिन इसी चीज को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए समाज में जब इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, तब फिर उत्पात होता है। ऐसे ही अन्य चीजें, अवैध संग करना, मांसाहार करना, ये सारी चीजें कभी कभी शास्त्रों से भी उद्धृत करते हुए लोग इनका गलत उपयोग करते हैं। एक ऐसा समय आया था जब ब्राह्मणों ने शास्त्रों से दिखलाकर कि शास्त्र में भी मांस खाना वर्जित नहीं किया गया है, ब्राह्मणों ने ऐसे वातावरण को फैलाया कि फिर भगवान को अपना एक रूप प्रकट करना पड़ा बुद्ध देव का, उन्होंने आकर अहिंसा सिखलाई। तो इसीलिए वेदों को ठीक से समझना भक्तों के मुख से, आचार्यों के शिक्षाओं से, ये बड़ा आवश्यक है, नहीं तो हम लोग अपने सभ्यता को खो बैठेंगे, मानवता को खो बैठेंगे। आजकल जो समाज में है, बाहर कितना कष्ट है, हम लोगों का बड़ा भाग्य है कि हम भारत जैसी पुण्य भूमि में जन्म लेते हैं। भारत को पुण्य भूमि क्यों कहते हैं? केवल इसलिए नहीं कि भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं, ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि भगवान ज्यादातर यहाँ पर प्रकट होते हैं, लेकिन अगर भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो देखिए भारत में कितनी अच्छी व्यवस्था है, भारत का वातावरण कितना अच्छा है। हम यहाँ पर देखते हैं दिन में 12 घंटे 8 घंटे 10 घंटे सूरज रहता है, दिन रहता है, फिर रात होती है, लेकिन इस पृथ्वी पर ऐसे कई स्थान हैं जहां ऐसा नहीं है। आप अलास्का जाइए, 6 महीना रात और 6 महीना दिन, खैर 6 महीना सूरज नहीं निकलता है, केवल अंधकार। कई ऐसे स्थान हैं जहां पर रात को 12 बजे सूरज डूबता है, उनको कहते हैं लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, ऐसा स्थान जहां मध्य रात्रि में भी सूर्य होता है। तो आप सोचिए क्या अवस्था होगी, 12:30 बजे सूर्य अस्त होता है रात को, 3 बजे फिर उदय हो जाता है। आप अगर सोना भी चाहेंगे तो कैसे सोएंगे, यहां पर तो सूर्य अस्त होता है, उसके बाद अंधकार होता है, उसके बाद बाकी सारी क्रियाएं करके फिर सोते हैं, और फिर आराम से 6-7 बजे सूर्य उदय होता है, बड़ी सुविधा है। लेकिन वहां सोचिए 12:30 बजे सूर्य अस्त होता है, अर्थात रात को 12 बजे ऐसे लगता है जैसे अभी दिख रहा है पूरा दिन, और फिर 3 बजे फिर से। नहीं तो कई कई ऐसे स्थान हैं जहां पर दोपहर तक सूर्य उदय ही नहीं होता, अंधकार रहता है, 12-1 बजे दोपहर में सूर्य उदय होता है थोड़ा थोड़ा, और 3 बजे फिर अंधकार हो जाता है। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे स्थानों में रहते नहीं हैं कि कितना कष्ट उस व्यक्ति को वहां रहने वालों को होता होगा, न ठीक से सो सकते हैं, न खा सकते हैं, कभी कभी कई स्थानों में कई महीनों तक बर्फ गिरती रहती है, और केवल वो इतना कार्य कर सकते हैं कि अपनी खिड़की को थोड़ा सा साफ करके कितनी बर्फ गिर रही है उतना देख सकते हैं, बाहर नहीं आ सकते। क्योंकि बाहर आते हैं तो ऐसा बताते हैं उन देशों में जो ठंड है वो हड्डियों में चली जाती है, बोन्स में चली जाती है, आप चाहे कितना भी मोटा कपड़ा क्यों ना पहने। तो ऐसी अवस्था में रहना, ऐसे लोगों को तो नरक जाने की आवश्यकता ही नहीं, भगवान ने यहीं पर व्यवस्था कर दी है उनके लिए। तो कहना चाहिए कि ऐसे सारे पापी लोग वहां जन्म लेते हैं, है ना, कष्ट भोगते हैं, और जो पुण्य आत्माएं हैं वो भारत में जन्म लेती हैं, लेकिन अज्ञान के कारण अमेरिका जाकर कष्ट भोगना चाहते हैं, ये हमारी स्थिति है। तो इसीलिए इस वैदिक सभ्यता को समझना चाहिए कि किस प्रकार ये जो समाज का पतन हो रहा है ये केवल एक कारण है, क्योंकि हम लोगों ने वैदिक सभ्यता को ठीक से समझा नहीं। हमने आधार वैदिक सभ्यता का बहुत गलत बनाया है। ये वैदिक सभ्यता ये पूर्व कालों से धीरे 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 जब उसका पतन होता हुआ आया तो आज ऐसी अवस्था में आया है कि जहां केवल रजोगुण की वृद्धि हो गई है इस समाज में, और उसके कारण हम अपनी अपनी इच्छाओं को इतना बढ़ा चुके हैं कि भगवान को स्वीकार करने में हमें कठिनाई होती है। लोग बड़ी बड़ी चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भगवान बनना चाहते हैं, कोई थोड़ा सा चमत्कार दिखाते हैं, कोई सोना प्रकट करते हैं, बहुत सारे ऐसे भारत में अम्माएं और पिता और बाबा हैं जो ये कार्य करते हैं, लेकिन उसमें आध्यात्मिक क्या है? अगर कोई व्यक्ति अपने हाथ घुमाकर अगर सोना प्रकट भी करता है तो उसमें आध्यात्मिक क्या है, उससे उसे लाभ क्या है, भगवान के कितना निकट है? एक बार एक सन्यासी हमारी संस्था के बतला रहे थे कि एक बार वो एक ऐसे सभा में गए थे जहां बहुत सारे योगी बैठे हुए थे और बोलने वाले भी कोई महान योगी थे, तो उनके पास में एक व्यक्ति बैठे थे योगी से थोड़े से दिख रहे थे। तो जब प्रारंभ हुआ कार्यक्रम तो अचानक बारिश आने लगी, वर्षा आने लगी, तो जब वर्षा आ रही थी तो सब लोग सोचने लगा रहे अरे इतना अच्छा कार्यक्रम सब, क्योंकि खुले में था वो, कोई हॉल नहीं था। दरअसल योगी अगर सही में योगी हैं तो तो फिर उनको तो तपस्या करनी चाहिए। आजकल के तथाकथित बाबा एसी गाड़ियों में मेडिकल इक्विप्ड वैन में घूमते हैं और अपने आप को योगी कहते हैं, बाहर नहीं रह सकते। तो योगी वो बैठे थे सब वहां पर, बारिश आने लगी और सबने कहा कि कार्यक्रम खराब हो जाएगा। फिर सन्यासी बता रहे थे कि इनके पास में जो योगी बैठा था वो अचानक उठा और उसने थोड़ा सा ऐसे किया अपने हाथ को और बारिश रुक गई, बारिश नहीं आई। तो सन्यासी बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इतने बड़े योगी के पास में बैठा। लेकिन बता रहे थे कि जब उनसे उन्होंने बात की तो लेश मात्र भी आध्यात्मिकता उनमें नहीं थी। तो ये जो गुण हैं, अगर इनको भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं किया जाए तो ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। और कभी कभी तो योगियों को पता नहीं होता कि ये शक्ति उनको कहां से आई है। पिछले जन्म में योगी रहे होंगे, इस जन्म में वो शक्ति आ जाती है, अचानक कुछ हो रहा है, समझ नहीं पाते। जैसे एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध महिला है जो गणित के जो गणित में बहुत प्रसिद्ध है, उनको आप कोई भी नंबर दे दीजिए, उससे कोई भी मल्टीप्लाई करिए, वो तुरंत क्षणों में बता देती है। जैसे हम लोगों को कहा जाए कि 1 2 3 4 उसको मल्टीप्लाई करो 5 6 7 8 से, तो हम लोग सोचने लगेंगे ये क्या है, कैलकुलेटर लेकर बैठना पड़ेगा, उसमें भी नहीं आएगा। लेकिन उनका दिमाग इतना तेज है कि आप उनको कोई नंबर दीजिए, दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई, वो तुरंत आंसर आपके कंप्लीट करने से पहले आंसर दे देते। और उनको भी नहीं पता है ये कहां से शक्ति, उनसे पूछिए कि कहां से आपको पता है। पिछले जन्म की ये योगिक सिद्धियां हैं जिसके कारण कुछ योग्यताएं कुछ शक्तियां हमें मिलती हैं, लेकिन उन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जैसे कई बाबा तथाकथित बाबा करते हैं और अपने आप को भगवान घोषित करते हैं, तो ये सारी चीजें ये रजोगुण के लक्षण हैं। शुद्ध जीव, निर्मल जीव जब इस भौतिक जगत में आता है तो उसके ऊपर आवरण पड़ते हैं। जैसे यहां पर बल्ब है, बल्ब को जब रात को जलाया जाए तो अगर बल्ब के ऊपर कोई आवरण नहीं है तो शुद्ध प्रकाश आता है। लेकिन उसी बल्ब के ऊपर जब हम कागज लगा दें, कभी कभी देखते हैं कि कुछ सजावट के लिए लाल रंग का नीले रंग का कागज लगा दिया जाता है, तो उससे जो प्रकाश आता है वो नीला आता है, लाल रंग से लाल आता है, हरे रंग से हरा आता है। इसी तरह जीव शुद्ध अवस्था में पूर्ण निर्मल है, लेकिन जब इस भौतिक जगत में आता है तो 3 गुणों में पड़ जाता है। तो ये 3 गुण कागज के समान है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। और इसकी जितनी भी लेयर्स बढ़ती जाती हैं, शुद्ध प्रकाश कम हो जाता है, इसीलिए जीव का स्वरूप प्रकट नहीं हो पाता, शुद्ध रूप में जीव को नहीं देख पाते। तो जो दिखता है वो गुणों से प्रभावित होता है, रजोगुण से विशेष करके। दरअसल इस जगत में हमारे सारे कष्टों का कारण रजोगुण है, हमारे अस्तित्व का कारण रजोगुण है। हम इस जगत में हैं, प्रभुपाद समझाते हैं कि केवल रजोगुण के कारण, इच्छाओं के कारण, बहुत सारी इच्छाओं को हमने अपने हृदय में रखा हुआ है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण, 6 लक्षण भगवान बताते हैं कि रजोगुणी व्यक्ति के क्या होते हैं। वो कहते हैं, रागी कर्म फल प्रेप्सु लब्धा हिंसात्मको शुचिहि। रागी अर्थात ऐसा व्यक्ति जो बहुत आसक्त है। राग मतलब आसक्ति, प्रेम नहीं, कई बार इसको प्रेम माना जाता है। तो रागी मतलब ऐसा व्यक्ति जो बड़ा आसक्त है, इच्छाएं करता है, उसकी आसक्ति है अपनी इंद्रिय भोग में। और उसके कारण जब कोई व्यक्ति उसके इंद्रिय भोग में सहायता करता है उसको अपना मित्र मानता है, कोई उसके इंद्रिय भोग में बाधा डालता है उसको द्वेष करता है और उसको शत्रु मानता है। प्रहलाद महाराज समझाते हैं भागवत में कि कौन हमारा शत्रु है और कौन मित्र है। जब उनके शिक्षकों ने उनसे कहा कि देखो विष्णु हमारा शत्रु है, असुर ये जो है ये मित्र हैं, प्रहलाद महाराज ने पूछा कि कौन शत्रु है और कौन मित्र, क्या परिभाषा है उसकी। हमारा कोई शत्रु नहीं है, हमारा कोई मित्र नहीं है, दरअसल हम ही अपने शत्रु हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं हमें बाध्य करती हैं किसी एक व्यक्ति को शत्रु मानने पर और किसी एक व्यक्ति को मित्र मानने पर। जो सहायता करता है इंद्रिय तृप्ति में वो मित्र है, जो बाधा डालता है कुछ उससे द्वेष हो जाता है। इच्छा और द्वेष, इसके द्वारा व्यक्ति इस भौतिक जगत में बंधा रहता है, इस द्वंद्व में पड़ा रहता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, भगवान बताते हैं भगवद गीता में कि हे भरतवंशी, हे अर्जुन, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इस जगत में व्यक्ति इस द्वंद्व में पड़ा रहता है कि किस तरह से इच्छाओं की पूर्ति वो करता रहे या फिर द्वेष करता रहे। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, तो सदैव इस द्वंद्व में कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है, क्या मेरा है, मैं कौन हूं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा समाज है, ये मैं हूं, ये द्वंद्व इच्छा द्वेष समुत्थेन, और ये उत्पन्न होता है इच्छा और द्वेष, और इसी द्वंद्व में हम पड़े रहते हैं, इच्छाएं करते हैं द्वेष करते हैं। वो व्यक्ति जो इससे परे जाता है, न शोचती न कांक्षती, वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। और जो व्यक्ति केवल द्वंद्व में पड़ा रहता है वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान भगवद गीता में ही इसी श्लोक के बाद इच्छा द्वेष समुत्थेन के बाद बताते हैं कि कैसे इस द्वंद्व से मुक्त हुआ जा सकता है। ठीक है, जीवन में द्वंद्व है, कष्ट है, भौतिक जीवन है, तो क्या ऐसे ही रहना चाहिए? भगवान बताते हैं, एषां द्वंद्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रतः। द्वंद्व से कौन मुक्त होता है? भजन्ते मां दृढव्रतः, जो मेरा भजन करते हैं। और मेरा भजन कौन कर पाते हैं? येषां तु अंतगतं पापं, जो लोग पाप करना छोड़ देते हैं, जिनके पाप कर्म समाप्त तो हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अगर जीवन में इन द्वंद्वों से बाहर आना है, भगवान की भक्ति करनी है, तो फिर हमें पाप पूर्ण जीवन को त्यागना होगा। ऐसा जीवन जो केवल इंद्रिय भोग पर आधारित है, इच्छाओं पर आधारित है, ऐसे राग को, ऐसी आसक्ति को त्यागना होगा, इससे परे जाना होगा। तब हम जाकर जब भगवान की भक्ति में लगते हैं, भजन्ते मां दृढव्रतः, तब हम इस राग से, इस आसक्ति से परे जा सकते हैं। वही आसक्ति जो हम अभी इंद्रिय विषयों में लगाते हैं, भोगों में लगाते हैं, कितना मन भागता है हमारे इंद्रिय विषयों के लिए, भोग के लिए, रोक नहीं पाते। सुनते हैं रोज कृष्ण कथा, सुनते हैं ऐसी कथा जो मन को शुद्ध करती है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भीरीतम कल्मशापहम, कितनी सुंदर कथा है भगवान की, सारे कल्मशों का नाश कर देती है। लेकिन फिर भी इन कथाओं को सुनते हुए भी हृदय से आसक्ति नहीं जाती। तो ये पहला लक्षण है रजोगुणी व्यक्ति का, रागी, आसक्त रहता है। दूसरा लक्षण भगवान बतलाते हैं कर्म फल। ऐसा व्यक्ति जो रजोगुण में रहता है वो सदैव कर्म फलों के प्रति आसक्त रहता है। आज मैं ये कर रहा हूं, मुझे इतना मिलना चाहिए, मैं इतना व्यापार में डाल रहा हूं, उतना आना चाहिए, कर्म फल। और जब तक हम लोग कर्म फल से आसक्त रहते हैं तब तक हम लोग मुक्त नहीं हो पाते। कर्मण्यबाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु माति संगोत्सव कर्मणि। आसक्त नहीं रहना चाहिए भगवान बताते हैं, क्योंकि कर्म फल से आसक्त रहोगे तो फिर भगवान पर विश्वास नहीं रहेगा। अगर हम लोग भगवान पर पूर्ण विश्वास करना चाहते हैं तो हमें कर्म फल से मुक्त होना पड़ेगा। और कर्म फल से व्यक्ति कैसे मुक्त हो सकता है? राग से मुक्ति होती है, आसक्ति से मुक्ति होती है। कैसे मुक्ति होती है? भजन ते माम दृढ़तः, जब हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। कर्म फल से कैसे मुक्ति होती है? जो व्यक्ति कर्म फल से आसक्त है उसकी मुक्ति होती है ये जानकर कि हम सब एक कठपुतलियां हैं। दरअसल इस जगत में जीव कठपुतली के समान है। कठपुतली अर्थात कट यानी लकड़ी, लकड़ी की गुड़ियाएं बनाई जाती हैं और उनके ऊपर तारे लगी होती हैं और फिर वो तारे व्यक्ति अपने हाथ से घुमाता है। व्यक्ति दिखता नहीं है, उसका हाथ दिखता नहीं है, तारे भी नहीं दिखती हैं जो उससे लगी हैं। केवल वो कठपुतली नाचते हुए दिखाई देती है। हम लोगों ने बचपन में वो देखा था, आजकल तो नहीं दिखाई देता है, वो बहुत कम, वो जो कला है वो समाप्त हो गई है प्राय, लेकिन पहले देखा जाता था। तो ऐसे लगता था दिखने से पर्दे के सामने कि केवल वो नाच रही है, लकड़ी की गुड़ियां हैं। बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा अजीब भी लगता था बच्चों को कभी कभी, अरे ये अपने आप कैसे लकड़ी नाच रही है। लेकिन वो अपने आप नहीं, वो कोई नचाने वाला था। इसी प्रकार हम सब हैं, हम सब केवल निमित्त मात्र हैं। अर्जुन ने जो भगवद गीता में युद्ध करने के लिए मना कर दिया तो भगवान ने उसको समझाया कि तुम ऐसा मत सोचो कि तुम मारने वाले हो। यशो लभस्व भूक्ष्म राज्यम समृद्धम, जो राज्य है इसको भोग करो। मय्येवमेते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सत्य साक्षी, इन सबको मैं पहले ही मार चुका हूं। ये द्रोण, ये भीष्म, दुर्योधन, जिसको भी आप देख रहे हो सबको मार चुका हूं। निमित्त मात्रम भव सत्य साक्षी, आप केवल निमित्त बनो। तो कर्म फलों से हम मुक्त हो सकते हैं, कर्म फलों की आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं ये जानकर कि हम लोग केवल निमित्त हैं। निमित्त मात्रम भव सत्य साक्षी। तो रागी कर्म फल प्रेषु लब्धा, अर्थात बहुत लोभी होना, ये भी रजोगुण का लक्षण है। पहला लक्षण है आसक्ति, दूसरा लक्षण है कर्म फलों से आसक्ति, तीसरा लक्षण है लोभ। हम लोग लोभी होते हैं, इस जगत में कुछ पाना चाहते हैं, हर चीज का लोभ है। किसी को सत्ता का लोभ है, किसी को धन का लोभ है, किसी को स्त्री का लोभ है। लोभी व्यक्ति, ये लोभ कहां से आता है, कहां से उत्पन्न होता है? जब व्यक्ति के हृदय में बहुत काम बढ़ जाता है, क्रोध बढ़ जाता है, लोभी हो जाता है। और ये तीनों चीजें हमारे लिए बहुत सुंदर व्यवस्था करती हैं जिसके द्वारा हम नरक में जाते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, भगवान बताते हैं कि ये तीन द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्येदम, नरक ले जाते हैं ये द्वार। द्वारम नाशनम, नाश कर देते हैं। काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतं त्रयं त्यजेत, ये जो काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये तीनों ऐसे द्वार हैं जो हमें नरक की ओर ले जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि इसको त्याग देना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए। लोभी व्यक्ति कभी भगवान के निकट नहीं आता, और अगर लोभ होना भी है, अगर लोभ करना भी है तो हमें कृष्ण के लिए लोभ करना चाहिए। लालसा, आचार्य ने प्रार्थना की है जिनको लालसामयी प्रार्थना कहते हैं, ऐसा लोभ होना चाहिए कि हम कृष्ण के चरण कमलों की सेवा कर सकें। तो तीसरा लक्षण है। तो भगवान बताते हैं, रागी कर्म फल प्रेक्षु लब्धो हिंसात्मको अशुचि, तो चौथा लक्षण है हिंसात्मक। ऐसा व्यक्ति जो रजोगुण में रहता है वो हिंसा करता है। अहिंसा ये सत्वगुण का लक्षण है और हिंसा ये रजोगुण का लक्षण है। और पागलपन प्रमाद ये तमोगुण का लक्षण है। तो इसीलिए जो व्यक्ति रजोगुण में रहता है वो हिंसा करता है, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है, मारने के लिए तैयार रहता है, शारीरिक हिंसा करता है, मानसिक हिंसा करता है, ऐसे व्यक्ति को रजोगुणी कहा जाता है। हिंसात्मक अशुचि ही, फिर वो व्यक्ति अशुचि पवित्र नहीं रहता, शुचि नहीं रहता, हिंसा भी करता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि महाभारत के युद्ध में एक व्यक्ति दुर्योधन जो भरा हुआ था रजोगुण से, ये सारे गुण उसमें देखे जा सकते हैं, आसक्त था, लोभी था, कर्म फलों के प्रति आसक्त था, हिंसक था, एक व्यक्ति के लिए लाखों करोड़ों लोगों की जान दे, अगर उसने राज्य दे दिया होता, पांच गांव दे दिए होते पांडवों को, शायद करोड़ों लोग ना मरते। हिंसक और अशुचि ही, अशुचि मतलब पवित्र नहीं है। आज हमारा जीवन बड़ा अपवित्र है क्योंकि हमारी इंद्रियां रजोगुण से भरी हैं और इन रजोगुणी भरी इंद्रियों से जो भी देखते हैं वो अपवित्र है। चाणक्य पंडित बतलाते हैं कि किस तरह की हमारी दृष्टि होनी चाहिए। पंडित किसे कहते हैं? वो कहते हैं मातृवत। सारी जो स्त्रियां हैं परदारेषु, उनको मातृवत देखना चाहिए, माता के समान देखना चाहिए। पर द्रव्येषु लोष्ट्रवत, दूसरों का जो धन है उसको पत्थर के समान देखना चाहिए, कूड़े करकट के समान देखना चाहिए। और बाकी सब लोगों को आत्मवत सर्वभूतेषु, सारे लोगों को आत्मवत अपने ही समान देखना चाहिए। अर्थात जो सुविधाएं जो चीजें आप अपने लिए चाहते हैं वो दूसरों को देना चाहिए। पश्यति स पंडित, वो व्यक्ति पंडित है जो ऐसा देखता है। लेकिन आज अशुचि पवित्रता नहीं है, इसलिए स्त्रियों को मातृवत नहीं देख पाते, मातृवत परदारेषु, और दूसरे के धन को उस पर हमेशा नजर रहती है। व्यक्ति अपने धन से संतुष्ट नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि दूसरे का ज्यादा धन देखकर उसको कष्ट हो जाता है। दूसरे के सुख से जितना कष्ट व्यक्ति को होता है उतना अपने दुख से नहीं होता। इसीलिए अशुचि की ये भी लक्षण है रजोगुण में रहने वाले व्यक्ति का, जिसको भगवान समझाते हैं 18वां अध्याय। तो सबसे पहले कौन सा लक्षण है? हाँ, रागी। रागी मतलब आसक्त, कर्म फलों से आसक्त, ये दूसरा लक्षण। लोभी ये तीसरा लक्षण। हिंसात्मक ये चौथा लक्षण। फिर अशुचि ये पांचवा लक्षण। हर्ष शोक अन्विता ये छठा लक्षण है। हर्ष शोक अन्विता अर्थात हर्ष और शोक में सदैव डूबा रहता है रजोगुणी व्यक्ति। कैसे डूबा रहता है? जब बहुत ज्यादा हर्ष होता है, बहुत ज्यादा खुशी होती है उसको, तो बाकी सब कुछ भूल जाता है। और जब बहुत ज्यादा शोक होता है तो भी सब कुछ भूल जाता है। हमेशा ऐसी स्थिति में रहता है, अपना समतल या अपना संतुलन नहीं बनाए रख पाता। तो इसलिए हम लोगों को जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं तो हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि हम लोग कम से कम अपने आप को रजोगुण से ऊपर उठा सकें, क्योंकि ये सारे लक्षण रजोगुण के हैं। अगर इसी गुण में रहे तो कभी भगवान के निकट नहीं आ सकेंगे, भक्ति नहीं कर सकेंगे, और भक्ति तो दूर की बात, पापमय जीवन को भी नहीं त्याग सकेंगे। मनुष्य शरीर में आकर कम से कम हमें पाप करने बंद करने चाहिए। तो इसीलिए हमें अपने आप को इस सत्व गुण तक उठाना चाहिए और तब हम लोग इस वैदिक सभ्यता को समझ पाएंगे। तब हम ऐसी चीजों को जो दिखने में नैतिकता के विरुद्ध लगती हैं उसको जान पाएंगे और ये ऊंचे सभ्यता को स्वीकार कर पाएंगे। आप सोचिए कितनी ऊंची सभ्यता थी कि जहां पर कोई दूसरा पुरुष एक स्त्री दूसरी स्त्री के गर्भ में संतान उत्पन्न करता था, लेकिन वो स्त्री दूषित नहीं कहलाती थी, उसका मान सम्मान होता था। अंबिका अंबालिका को दूषित नहीं माना गया, कुंती महारानी को दूषित नहीं माना गया। तो इस तरह से ये सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, जहां इन चीजों को किया जाता था, इसको समझा जाता था। लेकिन आज क्योंकि सब तरफ समाज में केवल काम फैला है, और इस कारण से हम लोग न भगवान को समझ पाते हैं न भगवान के भक्तों, और फिर प्रेम भगवान का ही तो बहुत दूर की बात है। आज श्रीपद माधवेंद्र पुरी का भी तिरुभाव दिवस है। माधवेंद्र पुरी ने उस प्रेम को प्रकट किया जो सर्वोच्च अवस्था है। माधवेंद्र पुरी जनक माने जाते हैं कृष्ण प्रेम को प्रकट कराने में। उन्होंने बीज बोया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि माधवेंद्र पुरी ने बीज बोया, ईश्वरपुरी ने उसको सींचा, जल दिया, और फिर वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वृक्ष के रूप में प्रकट हुआ। तो ऐसा प्रेम जो बहुत शुद्ध है, जिसमें कोई कलमश नहीं है, कोई गुणों का दोष नहीं है, ऐसे प्रेम को चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया, और जिसकी शुरुआत श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने की थी। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी वो आचार्य हैं जिन्होंने पहली बार इस संप्रदाय में विप्रलंब भाव को प्रकट कराया। विरह की भक्ति इसको प्रकट कराया, और फिर इसके द्वारा अपने जीवन की पूर्णता तक लोगों को पहुंचाया। माधवेंद्र पुरी, इनके विषय में कई बार हम लोग सुन चुके हैं, आज समय कम है। उन्होंने चंदन यात्रा प्रारंभ की, भगवान को चंदन लगाया, भगवान के लिए बड़ा कष्ट सहा। गोपाल जी को उन्होंने गोवर्धन में स्थापित किया। ऐसी कई कथाएं माधवेंद्र पुरी की हैं, और अपने जीवन के अंत में भी केवल भगवान का स्मरण किया। हरि दीन दया त्रिनाथ हे मथुरा नाथ कद अवलोक्य से हृदयम कातरम, बार बार हृदय से पुकार रहे थे कि कब मैं आपको देख सकूंगा, कब मैं आपका दर्शन कर सकूंगा। हे कृष्ण, हे मथुरा नाथ, हे दीनों के नाथ, हे दीन दया त्रिनाथ हे, कब आपको देख सकूंगा। ये भाव आचार्य ने प्रकट किया। माधवेंद्र पुरी ब्रह्ममध्व गौड़ीय संप्रदाय के बहुत प्रमुख आचार्य रहे, चैतन्य महाप्रभु के गुरु के गुरु, और इसीलिए इस संप्रदाय में बहुत महत्वपूर्ण स्थान। ऐसे आचार्य जिनको स्वयं कृष्ण ने आकर दर्शन दिए, तो आज उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस प्रेम को, जिस विरह भाव को वो प्रकट कराना चाहते थे, उसकी एक बूंद मात्र भी अगर हमारे हृदय में प्रकट हो, तो हमारा जीवन सफल हो सकता। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका या टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते? ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की श्री प्रभुपाद की, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको स्मरण करा दें कि आज दोपहर को तिजोरी में लोकनाथ स्वामी महाराज यहाँ पर पधार रहे हैं। आज दोपहर का प्रवचन उनका होगा, और कल से गौर कथा प्रारंभ करेंगे। तो आप सबसे विनती है कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ देने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर बुला दें। Thank you.